थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हबक्कूक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर पिता की निकटता में रहते हुए अपने प्रिय जनों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों पुराने नियम में से बाइबल की पुस्तक हबक्कूक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सबों ने देखा है कि किस प्रकार हबक्कूक परमेश्वर से प्रश्न करता है और परमेश्वर उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और यहाँ तक कि उसे बताते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार धीरजवंत है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर के इस अध्ययन के लिए वचन में सीखने के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है कि हम रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके जीवित और सामर्थ्य और सत्य वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आज जब हम हबक्कूक नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, आज जब हम इस पुस्तक के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं और हम इस पुस्तक से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि वे आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में उन आशीषों को ग्रहण कर सकें जिसे आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आप उनके पापमय जीवन से उन्हें छुटकारा दें, ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के इस अध्ययन पर हम आपकी विशेष आशीष चाहते हैं। प्रभु जी, आप हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे मित्रों, हम सब हबक्कूक की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन से लेकर के अब तक हमने अपने जीवन में बहुत सारे आशीषों को देखा है और पाया है। आज इस पुस्तक का हमारे लिए अंतिम अध्ययन होगा। हबक्कूक ने अपने लोगों की शिकायत परमेश्वर से की और जब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया तो उसे अच्छा नहीं लगा कि परमेश्वर एक विजातीय अन्य देश के लोगों के हाथों उसकी प्रजा को दंड देगा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि वह उन्हें तो अंत में नष्ट कर ही देगा। परमेश्वर के उत्तर को सुनकर हबक्कूक में बड़ा परिवर्तन आता है और वह परमेश्वर की स्तुति में भजन गाता है, जिसमें वह परमेश्वर के दर्शन का वर्णन करता है कि उसका तेज चारों ओर व्याप्त है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। वह सूर्य के समान चमक रहा था और उसके हाथों से ज्योति की किरणें निकल रही थी। मेरे मित्रों, आइए हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हबक्कूक नबी के पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ें। यहां पर लिखा हुआ है, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। मेरे मित्रों, पुस्तक के अंत में हबक्कूक अपना व्यक्तिगत अनुभव भी सुनाता है। उसने अपने व्यक्तिगत अनुभव से पुस्तक का आरंभ किया और अब वह अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। क्या आपने किसी संकट में या आपातकालीन स्थिति में अपने पेट में कुछ विचित्र सी अनुभूति की है? हबक्कूक के साथ ऐसा ही हुआ था। कहता है, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे। क्या आप कभी ऐसा डरे हैं कि आपके मुंह से आवाज ना निकली हो? हम में से अनेकों को ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है। मुझे याद है कि एक बार मेरे छोटे भाई के साथ मैं जंगल में नदी के किनारे मछली मारने के लिए गया हुआ था और तब मेरे बड़े भाई हमें बिना किसी प्रकार की सूचना दिए हुए वहां पहुंच गए और झाड़ियों के बीच में एक अजीब प्रकार की आवाज देने लगे और मैं बिल्कुल डर गया और भागने लगा और मेरा छोटा भाई जो काफी छोटा था वह भी मेरे पीछे गिरते पड़ते भागने लगा और ऐसा लगा कि मैं अपनी ही जान बचा रहा हूं और छोटी भाई की चिंता नहीं कर रहा हूं। तब मेरे बड़े भाई ने आवाज लगाई और कहा कि मैं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत डर गया था। कभी कभी हमारी आवाज निकलने बंद हो जाते हैं, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। ये अनुभव बहुत गजब का होता है। मेरे प्रिय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक बार मेरी एक मित्र की लड़की ने मुझे अपने पिता की पिस्तौल ला कर दी और कहा कि एक पुरुष उसके कमरे में छिप कर झांकता है। मैं पिस्तौल लेकर शाम के समय उनके घर के बाड़े में छिप गया, परंतु जब किसी को नहीं देखा तो उस लड़की से कहने लगा कि चिंता की कोई बात नहीं है। तभी एक साया मुझे दिखाई दिया। वह मुझ पर झपटना चाहता था परंतु डर के मारे हिला नहीं। मैं भी बहुत डर गया था। मैंने उस पर गोली चलाना चाहा परंतु मैं जड़ हो गया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने गोली नहीं चलाई, मैं नहीं चला पाया। मैं उससे कुछ कहना चाहता था परंतु मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। यह देख उस लड़की ने अपने पिता को पुकारा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। इसी बीच वह व्यक्ति बाड़ा कूद कर भाग गया। मैंने उस पर दो बार गोली चलाई परंतु चूक गया। उस समय मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ जैसा हबक्कूक को हुआ था। मेरे प्रियो, हबक्कूक कहता है, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। वह खड़ा होने के योग्य ना रहा, उसे सहारे की आवश्यकता पड़ गई थी। मैं खड़े खड़े कांपने लगा कि मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा। मेरे प्रियो, वह जान गया था कि परमेश्वर दंड देगा और वह समय कठिन और दुखदायी होगा, और यही कारण है कि वह कहता है कि मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा। तब वह आगे कहता है हबक्कूक 3:17 में, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों। मेरे प्रियो, आगे हबक्कूक कहता है अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाखलताओं में फल लगें, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों। यह सब परमेश्वर का दंड होगा। तब हम आगे देखेंगे हबक्कूक की दशा। आने वाले दंड को देखकर भी हबक्कूक कहता है, हबक्कूक 3:18-19 में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि परमेश्वर हमारा बल और आनंद है। जी हां, परमेश्वर ने इस युग में हमसे शांति और समृद्धि की प्रतिज्ञा नहीं की है। एक पत्रिका निकलती है जिसमें वह मसीही संस्थान कहता है कि प्रार्थना द्वारा हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, धन, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि सब कुछ। मेरे मित्रों, परमेश्वर सेंटा क्लॉस नहीं है। यदि आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो हबक्कूक आपको उत्तर देता है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर स्वयं ही है। इस पुस्तक के आरंभ में हबक्कूक कहता है, हे परमेश्वर, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू मुझे बुराई क्यों देखने देता है? तू कुछ करता क्यों नहीं है? परमेश्वर ने हबक्कूक को गुम्मट में बुलाकर अपने भावी कार्यों की व्याख्या की, और अब हबक्कूक कहता है, मैं परमेश्वर के साथ विश्वास से चलूंगा। मेरे मित्रों, मैं आपको नहीं जानता और आपकी समस्या भी नहीं जानता, परंतु यह जानता हूं कि परमेश्वर आपका उत्तर है। आप उसमें विश्वास एवं भरोसा रख सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है जिसे वह पूरा करना चाहता है। आप प्रभु यीशु पर भरोसा रखें और तब आपको बोध होगा कि वह आप में काम करना आरंभ कर रहा है। वह आपको अपने रूप में ढालना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु यीशु के स्वभाव में हो जाएं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 और 29 पद में पौलुस लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पौलुस के कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का अनंत उद्देश्य आपके निमित्त है कि आप प्रभु यीशु के स्वरूप में हो। वह दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 18 पद में कहता है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए एक उद्देश्य है, चाहे आप जो भी हैं। अब यदि कोई यह कहे कि उसके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य आपसे अधिक महान है तो वह सर्वथा गलत है। आप परमेश्वर के लिए इस संसार में किसी से कम महत्व नहीं रखते, चाहे वह पहले रहा हो या भविष्य में आए। वह आपको प्रभु यीशु के स्वभाव में ढालना चाहता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 47 से 49 पद में लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। हमारी ये पार्थिव देह वास्तव में मिट्टी से बनाई गई है, परंतु यह परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य नहीं है। उसका लक्ष्य है कि हम स्वर्गीय बने। जी हाँ, यदि आप किसी मूर्तिकार के पास गए, वहां आपने देखा कि एक संगमरमर का गंदा सा पत्थर पड़ा है। 6 महीने के बाद आप पुनः उसके पास गए तो वहां आप क्या देखते हैं कि एक अति सुंदर मूर्ति खड़ी है। मूर्तिकार का एक उद्देश्य था कि उस गंदे पत्थर को सुंदर रूप दे। इसी प्रकार परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि हम पार्थिव मनुष्यों को स्वार्गिक बना दे। हमारा शिल्पकार पवित्र आत्मा है जो हमें प्रभु यीशु का रूप प्रदान करना चाहता है। उसका तराशने वाला साधन प्रभु का अनुशासन है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 6 पद में व्यक्त किया गया है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, अतः हम भजनकार के साथ कह सकते हैं, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। भजन संहिता 17 उसके 15 में हम इसे पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके प्रश्न का उत्तर है। परमेश्वर आपकी समस्या का उत्तर है। आप जहां भी हैं, जो भी हैं, उसमें आनंदित रहें, उसके उद्धार में आनंदित रहें। आप हबकूक के साथ जो आरंभ में निराशवादी था, कह सकते हैं, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। जी हाँ, यह पुस्तक विषाद से आरंभ होकर महिमा में समाप्त होती है। यह पुस्तक प्रश्न चिन्ह से आरंभ होकर विस्मय में समाप्त होती है और हबकुक के महिमामय भजन को व्यक्त करती है। आप और मैं आज परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन को प्राप्त करें। मेरे मित्रों, यह पुस्तक छोटी अवश्य है, परंतु निश्चय ही यह हम सबके जीवन के लिए अति लाभकारी और शिक्षा प्रद है, क्योंकि हमारे सोच भी ऐसे ही हैं। इस पुस्तक के अंदर में हम सबों ने देखा है कि हबकुक परमेश्वर की निकटता में आकर के प्रश्न करता है, कहता है कि दुष्ट लोग फलते और फूलते हैं, परंतु तू चुपचाप रहता है। कब तक चुप रहेगा? दुष्टों को सजा क्यों नहीं देता? और अंततः परमेश्वर उसे बताता है कि वह दुष्टों को दंड देगा, यहूदा वासियों को दंड देगा। उसने यह भी बताया कि कैसे वह दंड देगा। वह उन क्रूर लोगों को जो अन्य जातियों में से थे, उस चुनी हुई प्रजा को दंड देने के लिए चुनता है। और तब हबकुक कहता है कि वे तो इससे भी अधिक दुष्ट हैं, क्या तो उनके द्वारा अपने लोगों को दंडित करेगा? और परमेश्वर उसे स्पष्ट करते हैं कि हाँ, मैं उनके द्वारा यहूदियों को दंडित करूंगा, परंतु मैं उन्हें भी जो इसको दंड देंगे उनके पापों की सजा उन्हें दूंगा, उन्हें भी दंड दूंगा। मेरे प्रियो, इस पुस्तक में हम इसी बात को देखते हैं कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, अनुग्रहकारी है, वह न्यायी है और धर्मी है। वह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उसको जाने कि वह धैर्यवान परमेश्वर है, और वह हमें अवसर देता है, मौका देता है, ताकि हम अपने पापों से प्रायश्चित कर अपने जीवन में उस परमेश्वर को जान जाएं, उसे अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। और यही मकसद था, यही उद्देश्य था परमेश्वर का, कि मनुष्यों को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में भेज दिया। वह स्वयं परमेश्वर होकर मनुष्य के रूप में हमारे मध्य में रहा, और सिर्फ इसलिए ताकि मनुष्यों को पाप के जाल से छुड़ाए, उस दलदल से बाहर निकाले। और प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के बदले में कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया, और हमारे पापों के कारण वह क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया और गाड़ा गया। तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा। आज भी वह जीवित है। जी हां मेरे मित्रों, उसने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर में ले लिया। बाइबल हमें बताती है रोमियों के पत्री में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम हर एक मानव जाति ने पाप किया है, और उसकी मजदूरी मृत्यु है, जो मुझे और आपको सारे मानव जाति को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने मजदूरी के रूप में पाप किया है, हमने कमाया है, और उसका दंड हमें मिलना चाहिए। परंतु प्रभु यीशु ने अपने ऊपर में उस दंड को ले लिया, हमारी मृत्यु उसने अपने ऊपर ले ली ताकि हम बच जाएं। आज यही कारण है कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, क्योंकि किसी ने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर में ले ली है। मेरे मित्रों, क्या ही धन्य है वह परमेश्वर जो हम सारे मानव जाति से, अपनी सृष्टि से प्रेम करता है। वह हमें बार बार अवसर देता है कि हम अपने गलतियों को मान लें, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु के निकटता में आ जाएं, जिसने मेरे और आपके, हम सबके पापों को अपने ऊपर में ले लिया है। उससे कहें कि प्रभु, हमने गलती की है, हमने पाप किया है, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन आपने अपने ऊपर में ले लिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देती हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आ जाएं, मेरे पापों को आप क्षमा कर दें, मुझे धो करके शुद्ध कर दें, और मुझे एक नया व्यक्ति बनाएं, मैं पाप में जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, मैं पाप में जीवन नहीं जीना चाहती हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, आप मेरी सहायता करें। जी हाँ मेरे मित्रों, जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने में अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, तो निश्चय जानिए कि वो प्रभु यीशु जो आपके बदले में मर गया, जिसने अपने लहू को आपके लिए ही बहा दिया है, उसी लहू से आपके पापों को धोकर आपको शुद्ध करता है। आपको किसी प्रकार की कोई भी दान या दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं को आपके लिए दे दिया है। जी हाँ, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यदि आज आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु, जो कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मेरे श्रोता मित्रों, यदि आज आपने इस वचन को सुना है, आप अपने मन को कठोर ना करें, प्रभु यीशु के पास आ जाएं, नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। निश्चय जाने कि वह आपके पापों को क्षमा कर आपके जीवन में उद्धार का आनंद देगा। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर इस अध्ययन का समय समाप्त होता है और हम हबक्कूक की पुस्तक का अध्ययन भी समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सारी बातों को अपने जीवन में सीखा है। हम अगले अध्ययन में एक नए पुस्तक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे आशा है कि तब तक आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे और उससे प्रेम करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तू न अकेला अब मेरे साथ, यीशु है तेरे लिए, ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। चाहे खुदा